ऊंटा दी बातियां आकाशवाणी बीकानेर, जयपुर, माउंट आबू, उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर से एक साथ प्रसारित दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊंटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
राम राम सा, राम राम सा। ऊंटा दी बातियां कार्यक्रम सुनन वाला सगला ऊंट पालक भाई ने भोम जी भाई और
ओम जी भाई रा
घना घना
राम राम सा।
राम राम ओम जी भाई। देखो आज है वार शुक्रवार और से भेड़ा हुआ पीपल गट्टे हेठ है, पर आज यहाँ गाबा चमक रिया है। कई बात है
थाने ठाकू नी
कई
थारे घरे में कुंकू पत्री देव ने आयो होनी।
ओहो हाँ 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 बाणिये को ब्याह है।
तो देखो नाना और मामा ये तो बन ठन रह जाई सी। देखो ब्याह रे मायने
बिल्कुल सा हक बने मामा के जी को और नाना जी को तो जानो ही चीजे सा। और देखो घर आ गए थे जी का ऊंट खड़ा करिया होनी बरात सारू मन देख पर तो मारा जी शोर हो गयो। अच्छा ऊंट गाड़े पर बैठा नहीं और मेरा घुघरिया बाजे जन मन रे मायने बड़ी शांति मिले अच्छो लागे मन तो
किया नहीं करा। देखो भोम जी भाई है आखिर में देखो ऊंट अपने राजस्थान रो जहाज हाँ। और अपने राजस्थान री शान है।
बिल्कुल शान है सार। तो आज अपा पीपल गट्टे हेठे बैठे हैं बात कहीं कर सो आ बताओ।
बात तो देखो भोम जी भाई कागदिया जिका है नहीं इन बार जिका अपना पशुपालक भाई भेजा है नी
हाँ।
अलग अलग विषय भेजा है
कहीं।
देखो कई जना तो देखो सुनो चावे आज ऊंटारी नस्ल रे संरक्षण रे बाबत जानकारी कई जना लिखिया है कि ऊंट नी रो दूध है उन रे जानकारी ठीक है। और एक दो देखो एक कागज थारखने पड़िया नहीं देखो इन माने ओ, देखो पर्यावरणीय पर्यटन।
अच्छा अच्छा
कुल मिलार देखो भोम जी भाई तीन विषय है
हाँ। तो तीनों विषय जिका घनखरा कागदार मायने है
हाँ।
तो देखो सा आज आप बातचीत कर सा विशेषज्ञ जिका या है नी वे विशेषज्ञ है जिका ई कार्यक्रम की शुरुआत करी थी ई भी नींव रा हिस्सा है सा।
देखो भोम जी भाई मने हूँ जेद रेडियो सुनतो नी
हाँ।
जद मने ठा है
हाँ ठा है। तो देखो स्वागत करो सा डॉक्टर शरद चंद्र मेहता साहब रो और आज आप बातचीत कर सा ऊंट नस्ल संरक्षण माए ऊंट नी रे दूध और पर्यावरणीय पर्यटन रो महत्व विषय मात है।
तो सेऊ पहले तो देखो थे जी की शख्सियत रो नाम बतायो तो उनरो आपा करा स्वागत।
बिल्कुल सर आप रो पीपल गट्टे हेठे डॉक्टर साहब घणो घणो स्वागत है आपने में करा।
राम राम, राम सा
राम राम सा।
तब सेऊ पहला डॉक्टर साहब माने आई बताओ कि जी ऊंटाई नस्ल है बीरबान मान थोड़ी जानकारी दो कि किसी किसी नस्ल है यहां पर प्रदेश रे माए।
देखो राजस्थान जो है देश में सबसे ज्यादा ऊंट रखता है फिर भी हमारे देश में मुख्य रूप से चार नस्लें हम बोलते हैं उसमें बीकानेरी जैसलमेरी कच्छी और मेवाड़ी है। समय के साथ ने कुछ और नस्लों को भी अभी इस लिस्ट में शामिल किया है जैसे एक सिंधी नस्ल का काम हुआ है उसी के साथ साथ एक खरई नस्ल जो गुजरात में तटीय क्षेत्र में पाई जाती है उस पर भी काम हुआ है और एक पिछली बार हमने जालोरी नस्ल पर भी कार्य किया था। तो इस तरह करीबी इस वक्त ये 7 नस्लें हैं उसमें सबसे मुख्य नस्ल है वो बीकानेरी नस्ल है सबसे ज्यादा संख्या में है। उसके बाद जो नस्ल आती है वो जैसलमेरी आती है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कच्छी नस्ल आती है गुजरात की, चौथे नंबर पर मेवाड़ी आती है। बाकी नस्लें उनकी भी है लेकिन उनकी संख्या इनसे काफी कम है।
तो देखो ओम जी भाई 7 नस्ल है कच्छी मराड़ी बीकानेर जैसलमेरी सिंधी खराई और जालोरी ए 7 नस्लें अपने प्रदेश रे मायने है।
तो देखो भोम जी भाई नस्ल रे बारे में तो डॉक्टर साहब आपने जानकारी दे दी और अब सवाल एक है जो दिमाग रे मायने बार बार घूम रहे वो ओई है डॉक्टर साहब के ऊंट रो जो संरक्षण है वो जरूरी क्यों है यारो संरक्षण किन बात करीजे।
देखो साहब पहली बात तो ये की ऊंट के संरक्षण के साथ साथ में अगर संपूर्ण पशुपालन की बात तो पशुओं में जितने भी बोझा ढोने वाले पशु थे उन पर इस समय संरक्षण की आवश्यकता है और आवश्यकता और भी कई कारण से है कि आज के समय में लोग हर आदमी जो है साफ सुथरा काम करना चाहता है नौकरी करना चाहता है सही सही शब्दों में। लेकिन हमारी नीति आयोग की जो रिपोर्ट है जिसको हम पहले योजना आयोग कहा करते थे वो ये कहती है कि हमने बहुत विकास किया फिर भी 2050 तक भारत की आधी आबादी गाँव में ही रहेगी। ये विकास की गति और उसके जो बदलते परिवेश को लेकर उनके जो कैलकुलेशन की है उसका नतीजा है कि 2050 तक भी आधी आबादी गांव में ही रहेगी, यानी कि उनको गांव में ही अपना रोजगार ढूंढना होगा। और उस रोजगार को ढूंढने के लिए उनको कृषि और पशुपालन दो ही मुख्य साधन है गाँव में, जो 1950 में 1955 से लगा के आज तक, यानी कि देश की आजादी उससे पहले और वर्तमान तक। और हम अगर योजना आयोग की और भी बात करें तो आज भी कृषि और पशुपालन ही इस देश में सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार दे रहा है। लगभग 40-50% जनता आज भी जो रोजगार पा रही है, चाहे कुछ लोग उसको इच्छा से कर रहे हैं, कुछ लोग उसको कम इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन रोजगार या शाम की रोटी या शाम का चूल्हा वो आज भी कृषि और पशुपालन से ही चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें इन पशुओं का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। एक दिन में कोई मशीनें लग नहीं जाएगी, एक दिन में दुनिया बदल नहीं जाएगी, आपके पास इतना पैसा आ नहीं सकता। विकास की जो गति है उसकी एक सीमा है। बैंक से लोन लो चाहे कहीं से लो, ये देश भी लोन लेता है और लोगों को बांटता है विकास के लिए, कई योजनाएं बनाता है, लेकिन उनकी क्रियान्वित में समय लगता है। और जिस तरह हम बढ़े, हमारी आबादी बढ़ी है, हमारे संसाधन उतने नहीं बढ़े, तो उन सब चीजों को हम देखते हैं तो हमें आज भी गांव में संसाधनों की बहुत जरूरत है। और उसमें पशुपालन एक चित परिचित और पुराना संसाधन है, उसी में ऊंट पालन भी एक मुख्य अंग है गांव के परिवेश में, और वो उनको सहजता से उपलब्ध है। सिर्फ एक मानसिकता से उसको छोड़ना कि ये सहज नहीं है या व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है, लोग क्या कहेंगे, इन बातों को लेके आप बॉम्बे चले जाएं, होटल में काम करें, प्लेटें धोएं, उनसे बेटर है, उनसे अच्छा है कि आप गांव में रहें, अपने माँ बाप का भी ध्यान रखें, पशुपालन करें, आजीविका कमाएं, 2 रुपया कम भी होगा तो गांव में आप अपने घर में रहते हैं, माँ बाप का ध्यान रखते हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो आपको ये कार्य करना चाहिए।
अब बात है डॉक्टर साहब संरक्षण की, तो संरक्षण उठा रहे वो क्या करा?
देखो साहब, ऊँटों के संरक्षण में सरकार भी कई चीजें कर रही है। पिछली बार आपको ध्यान हो, इसी बीकानेर की धरती से जब वसुंधरा सरकार थी तो इस ऊँट को राज्य पशु घोषित किया था
जी।
और राज्य पशु घोषित करने के पीछे उनका एक ही मकसद था कि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम करना पड़ेगा, और इस ऊँट को आगे लाने के लिए किसानों तक कुछ मदद पहुंचानी पड़ेगी। और जब ये ऊँटारी बात हमने कार्यक्रम शुरू किया था, ये सब उस वक्त की बातें हैं कि इसका बीमा पहले नहीं हुआ करता था, वो बीमा चालू हुआ ताकि अचानक कोई पशु गुजर जाए तो उस मालिक को ज्यादा नुकसान ना हो और उनके बच्चों को ये ना हो कि अब क्या करें। उसी तरह जो है इसके जो बच्चे पैदा नहीं कर रहे थे कुछ लोग कि बच्चा पैदा करेंगे ऊँटनी काम नहीं करेगी, जितने दिन क्या करेंगे, तो उसके लिए बच्चा पैदा होने पर भी सरकार ने एक सब्सिडी चालू की थी जिसमें 10,000 रुपया वो उसके लिए देते थे। इसके साथ साथ जो इसके मुख्य रोग है, तिबरसा जिसमें मुख्य रोग है या खुजली भी है, उसकी दवाएं सभी पशु चिकित्सालयों में सरकार ने मुफ्त रूप से उपलब्ध करा दी है। तो राजस्थान के किसी भी आप पशु चिकित्सालय में जाएं, इनके तीव्रसा के टीके और खुजली के जो टीके होते हैं वो और अन्य कोई भी उपचार हो वो मुफ्त में मिलता है। तो इस तरह सरकार भी मदद कर रही है और भी इसको आगे लाने के कई प्रयास चल रहे हैं। तो सरकार के प्रयास भी हैं, हमारे प्रयास भी हैं, और राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र भी इस पे अनवरत रूप से कार्य कर रहा है। जैसे एक तो होता है कि जो सामान्य बोझा ढोने का उपयोग है, लेकिन इस अनुसंधान केंद्र में एक चीज हम और कर रहे हैं कि बोझा नहीं ढोए अगर तो उसके साथ साथ इसके अन्य क्या उपयोग हो सकते हैं।
डॉक्टर साहब, अबे महाराज का ऊंट पालक भाई है, बे ओ जानना चाहे कि जद गाय और भैंस सु दूध मिलिया करे तो फिर ऊंट नीरे दूध रो काम में लेवण रो काई मतलब, इन रो काई महत्व है?
देखो, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश पूरे विश्व में, लेकिन इसके बावजूद जब हम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की बात करते हैं तो हम पहले 100 देशों में भी नहीं आते। इसका मतलब क्या हुआ कि दूध जितना हमें चाहिए उतना हमारे पास उपलब्ध नहीं है गाय और भैंस से, और जब गाय और भैंस से हमें इतना दूध नहीं मिल रहा है तो हम तीसरा पशु, बड़ा पशु जो हमें 5-7 लीटर 8 लीटर दूध दे सके एक दिन में, तो ऊंट को छोड़कर आपके पास कोई पशु नहीं है जो इतना दूध दे सकता है। यानी कि मात्रा के हिसाब से ऊंट ही एकमात्र गाय और भैंस के बाद ऐसा पशु है जो आपको 7 लीटर 8 लीटर 10 लीटर दूध दिन में दे सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसका दूध जो है औषधीय गुणों से भरपूर है। तो दोनों चीजें हैं, मात्रा भी है और उसकी क्वालिटी भी है, दोनों हिसाब से हम इसको देखते हैं। तीसरी चीज़ ये कि ये कई क्षेत्रों में दूध की उपलब्धता अच्छी है, जैसे बीकानेर और इसके आसपास अच्छी उपलब्धता है, लेकिन उदयपुर और उधर जाते हैं तो उपलब्धता नहीं है, गाय और दूध की उपलब्धता कम है। तो ऐसे क्षेत्रों में जब हम ऊँट पालन को देखते हैं तो लोग ऊँटनी का दूध निकालते हैं और वो बड़े आराम से बिकता भी है। अब तो भारत सरकार ने भी इसको आदमी के पीने के योग्य मानते हुए इसको सर्टिफिकेट दे दिया कि ऊँटनी के दूध और इसके उत्पाद आदमी के स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। अब जहाँ तक शोध की बात करें कि क्वालिटी वाइज और इसमें क्या क्या गुण है, तो आपको पता है कि इसमें फैट कम है, यानी कि वसा की मात्रा कम है, तो ये जो डायबिटीज और हार्ट के मरीज होते हैं उनके लिए अच्छा है। ये किसी न किसी तरह डायबिटीज में भी मदद करता है, इसका हमने पूरा शोध मानव चिकित्सकों के साथ किया, टीबी में भी ये मददगार है। आजकल इससे एक सांप रोधी टीका भी बन रहा है, उसमें भी बहुत अच्छे परिणाम आए, हो सकता है कि वो बहुत जल्दी बाजार में वो टीका भी मिलने लग जाए। तो इस तरह कई सारी चीजें हैं, हमने इसके दूध को लेके, दूध की मात्रा क्वालिटी को लेके हर तरह से शोध किया और ये पाया है कि ये दूध मानव के लिए एक वरदान है, और खास तौर से उन क्षेत्रों में जहाँ पानी भी पूरा नहीं मिलता, ऊँटनी का दूध पर्याप्त मात्रा में मिलता है और ये मानव के लिए बहुत उपयोगी है।
एक डॉक्टर साहब, मैं आपसे और जानकारी चाहूँ कि जो दूध की आप उपयोगिता बताई कि आ 300 पशु है जिसके से दूध आपने ज्यादा मिल सके, मेरे बावजूद भी आम जनता को दूध क्यों नहीं पहुंच पाए?
देखिए, जनता तक दूध पहुंचाने में डेयरी का बहुत बड़ा योगदान होता है, और डेयरी उसी चीज़ को आगे बढ़ा पाती है जहाँ पर वो तरल मात्रा में उसको पैक करके बेचती है और वो हर जगह सस्ता से उपलब्ध हो। ये हमने कोशिश की पहले डेयरी के माध्यम से, कि हमने दिल्ली में भी बेचा, जयपुर में भी बेचा, कई एनजीओ भी ऊँटनी का दूध अब बेचने लगे हैं, वो बोतल में पैक करके देते हैं और बड़े आराम से विश्व के हर कोने में भेज रहे हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से भी पहले ही एक प्रयास रहा था और अभी भी मैं कहता हूँ और वो काफ़ी हद तक साकार हो चुका है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मैंने हमेशा ये कहा है कि आप इस तरह की बात ना करो कि कोई आपके पास 200 ml दूध लेने सुबह सुबह आएगा, रोज कोई नहीं आ सकता आज के समय में, आपको वहां तक पहुंचना है तो उसके लिए तरीके क्या हो। तो मैं हमेशा कहता था कि जैसे ये ऊँटनी के दूध की एक डोज, और दूध नहीं हो के ऊँटनी के दूध का पाउडर हो और एक छोटे छोटे पैकेट में अगर मिले, तो लोग जैसे डायबिटीज वाला है और वो टूर में भी जा रहा है, तो 5 पैकेट वो 5 छोटी छोटी वो जो पुड़िया कह सकते हो देसी भाषा में, तो उस तरह की जो पुड़िया होती है वो आदमी कहीं भी ले जा सकता है और जहां उसको जरूरत है पानी ले, थोड़ा सा उसमें घोले और पी ले। तो जो अगर डायबिटीज का नियमित रूप से उपचार कर रहा हो, हार्ट का नियमित रूप से उपचार में को इस्तेमाल करता हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी वर्तमान में हमने इसका पाउडर बना के 200-200 ग्राम के पैकेट बना के लगभग उपलब्धता हो गई है, बीकानेर में भी हो गई है, वेबसाइट के माध्यम से पूरे भारत में भी ये जा रहा है, कई सारी वेबसाइट्स आ गई है उनके थ्रू ये बिक रहा आराम से। यही एक संभव मॉडल था कि अब हर आदमी तक पहुंचाने के लिए पाउडर चाहिए था, वो बन चुका है। छोटे छोटे पैकेट करके थोड़ी सी मार्केटिंग को बढ़ावा देने की बात है, तो चाहे वो किसी भी कोने में हो, देश के या विदेश के, वो इसको सहजता से रख भी सकता है और उसको रखने के लिए उसको किसी फ्रिज या उसकी आवश्यकता भी नहीं होगी। तो इस तरह की मार्केटिंग अब डेवलप हो रही है, काफी हद तक हो भी गई, उपलब्धता हो गई है, जरूर आगे बढ़ेगा।
बिल्कुल साहब, और नवाचार है, प्रयास हमेशा परिणाम दिया करे ओम जी भाई, और मेरे नतीजे है कि अब दूध जो मैं बात कही थी डॉक्टर साहब के जन तक क्यों नहीं पहुंच रहे, तो ये प्रयास आसू और दूध जो आम जन तक पहुंची मने आशा है, और आशा है देखो मासू महाराज का ऊंट पालक भाई है बिहाने, मैं थारी इशारो समझ गयो, ते सुनो चवो हो गीत अड़लो, तो आपसे सुनो भैया एक मीठो मीठो सो गीत अड़लो। तो सा आबार आप सुनियो एक मीठो मीठो सो गीतड़लो।
बीकानेर स्थित राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने।
इन बेला आप सुन रहा हो कार्यक्रम ऊँटारी बाता आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति। आज पीपल रे गट्टे हेठे देखो जानकारी देवन सरू पधारिया है डॉक्टर शरद चंद्र मेहता। राजा पर बातचीत कर रिया ऊँट नस्ल संरक्षण माए ऊँट नीरे दूध और पर्यावरणीय पर्यटन रो महत्व विषय पर।
भोम जी भाई गीतर ले सु पहली डॉक्टर साहब आपने बतायो ऊँटारी नस्ल और ऊँट नीरे दूध रे महत्व रे बारे में। बात बे करा पर्यावरणीय पर्यटन री तो डॉक्टर साहब ऊँट रो पर्यावरण और पर्यटन सु कई संबंध है, इन सु पशुपालका ने कई लाभ मिल सके।
देखो ऊँट तो हमारी संस्कृति में रचा बसा है और जैसे जैसे संस्कृति बदलती है हम लोग बदलते जा रहे हैं, लेकिन जो विदेशी लोग आ रहे हैं उनको हमारी संस्कृति देखनी है और वो देखने के लिए यहाँ आते हैं। बाकी सारी चीजें उनके पास है, लेकिन जैसे अमेरिका है वो हमसे बहुत बाद में बना है। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, ऋषि मुनि और वेदों के समय की संस्कृति है। हम लोगों ने बहुत कुछ इस विश्व को दिया है, हम भूल रहे हैं, लेकिन वो लोग पढ़ पढ़ के आते हैं कि ऐसा क्या हुआ करता था इस धरती पर। और इस धरती पर जब वो आते हैं तो वो नई चीज नहीं देखना चाहते, वो यहाँ की संस्कृति देखना चाहते हैं। लेकिन हम खुद संस्कृति छोड़ के सूट बूट जींस टाई लगा के दूसरी तरफ जा रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें करनी है कि हमारी जो ओरिजिनलिटी, हमारी जो वास्तविकता थी, जो प्राकृतिकता थी, उसको भी हम कहीं ना कहीं बनाए रखें। और उसी क्रम में एक नई चीज आ रही है, पर्यटन और पर्यावरणीय पर्यटन। पर्यावरणीय पर्यटन की मैं एक सिंपल शब्दों में व्याख्या करूं तो इस तरह है कि जैसे एक इको विलेज आजकल हम बोलते हैं। इको विलेज का मतलब होता है कि एक गांव हो जहां पर पुरानी सारी संस्कृति हो लेकिन आधुनिक सारी सुविधाएं हो। ये नहीं कि वहां लालटेन लगे, वहां लाइट लगे, सब कुछ हो, लेकिन पुरानी संस्कृति, पुराना हमारा रहन सहन, खान पीन, वो सारा वहां दिखे। और वो चीज देखने के लिए इतने लोग आते हैं। ये अभी महाराष्ट्र में बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। जैसे हमारी महिलाएं जो एक टी की जो वो तवा केलड़ी बोलते हो आप, उस पे बाजरे की रोटी बनाना, मक्के की रोटी बनाना, चूल्हा लगाना, गाड़िया लोहार जो है वो छोटे छोटे घर के काम के सामान बना रहा है, एक परिदृश्य बनाई है। कुआ हो, चरस चल रही हो, पानी निकल रहा हो, बेल उससे पानी निकाल रहे हैं, ये जो चीज होती है इसको देखने इतने लोग आते हैं कि आप अगर बड़ी फैक्ट्री लगाओ उसमें जितना नहीं कमा सकते उतना उसमें कमा लेते हो। एक रिसोर्ट की तरह ये चीज चलने लग गई है। तो अब हम पर्यावरणीय पर्यटन हम कर रहे हैं, ऊँटों का पर्यटन तो चल रहा है, हम सवारी कराते हैं, घुमाते हैं लोगों को, लेकिन अब उसको थोड़ा सा नए आयाम देकर आगे ले जाने की जरूरत है कि हम थोड़ा सा उसको बड़ा रूप दें, विस्तृत रूप दें, ताकि जो आम किसान है जो उसमें भाग ले वो उससे और ज्यादा पैसा कमा सके। और आज के समय में न केवल विदेशी, हमारे देशी लोग भी, उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ गई है कई लोगों की, और वो बड़े आराम से खर्चा कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत क्या है कि उनको हम कोई नई चीज दें, हमारे पास नया कुछ होना चाहिए। और हमें यहाँ जरूरत है, हमें नया कुछ नहीं देना है, हमारे को हमारी पुरानी चीजें संवारनी है परिशुद्ध रूप से कि जैसी वो पहले हुआ करती थी। कल मैंने एक उदाहरण दिया था कई परिचर्चा में कि मेघालय में एक गांव है, वो पूरे भारत का सबसे साफ गांव, क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया। अब वो गांव के लोग उसको साफ रखने के लिए मेहनत नहीं करते, उनकी आदत ही ऐसी है कि वो अपने आप साफ रहता है और उसको देखने विश्व के लोग आ रहे हैं। तो इसी तरह हम ऐसा गांव, ऐसी संरचना करें जहाँ गाय भी हो, भैंस भी हो, घोड़ा भी हो, ऊंट भी हो, और जो प्राकृतिक रूप से हमारे पुराने काम चलते रहते थे, और उस तरह का एक पर्यटन मॉडल विकसित करें, तो ये वाकई बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य होगा। और किसानों की आय को जो दुगुना करने का मकसद भारत सरकार का चल रहा है उसमें खेती तो बेशक वो करें ही, लेकिन ये उनकी इनकम में बहुत सारा इजाफा कर सकता है।
बिल्कुल सर। और अब बातचीत करना डॉक्टर साहब के पर्यावरण पर्यटन ने बढ़ावा देवन सारू कई प्रयास करना चाहिए और इरमायने सरकार कई योगदान दे रही है।
देखो पर्यावरणीय पर्यटन में सरकार तो सीधा योगदान इसलिए नहीं देती है कि ये काफी हद तक हमारे यहाँ प्राइवेट बिजनेसमैन के हाथ में होता है, लेकिन जो संस्थाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र है या हमारे अश्व अनुसंधान केंद्र है और इस तरह की जितनी संस्थाएं हैं वो एक एक मॉडल लगभग बना रही है। जैसे उष्ट्र अनुसंधान केंद्र में काफी समय से पर्यटन चल रहा है, उसी तरह हमारे अश्व अनुसंधान केंद्र में भी काफी समय से पर्यटन चल रहा है और हम उसको पर्यावरण को विशुद्ध रूप में पेश कर रहे हैं। और उससे आप अगर सोचें बीकानेर में भी अगर 20 साल 15 साल पहले की बात करें और आज बात करें तो ऐसे कई रिसोर्ट बन गए हैं जहां पर रिसोर्ट भी है, खाना पीना भी है और ऊंट की सवारी भी है। ऐसे रिसोर्ट भी हैं जहां खाना पीना भी है, टेंट भी है, धोरे भी हैं और घोड़ा भी है और ऊंट भी है। वही एक मॉडल की हम बात कर रहे हैं। किसी चीज की मांग अगर पैदा हो गई तो संसाधन तो अपने आप आ जाएंगे, लोग अपने आप प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हमारे को उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि इसमें सरकार को बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। अपने आप ये धंधा अगर अपन 5-10 सालों का अपन खुद एक दिमाग में चित्रण करें ना, तो आप खुद सोचेंगे कि इतनी जगह ऊंट पहुंच गया है पर्यावरण और पर्यटन में। और इसको सिर्फ ये है कि किसान तक सीधा पहुंचे और किसान को पूरा लाभ उसको खुद को मिले, इसलिए थोड़ा किसानों को भी आगे आना चाहिए ताकि वो भी अपने गांव में एक ऐसा मॉडल बना के यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो उस पर्यटन विभाग से संपर्क करे और उनको बोले कि ये सुविधाएं हम भी देते हैं, ताकि वो लोग जो भी पर्यटक आते हैं देश और विदेश से उनको वो बता सके कि भाई आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, आप होटल में जाएं, आप रिसोर्ट में जाएं या आप एक नेचुरल गांव है उसमें जाएं, और वहां जाएं तो इस व्यक्ति से संपर्क करें और वो इस तरह आपको ये चीज इस तरह करवा सकता है। तो ये जो चीजें हैं पर्यटन विभाग के माध्यम से आप आराम से कर सकते हैं, उष्ट्र अनुसंधान केंद्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ विश्वविद्यालय है, अन्य संस्थान है, सभी मदद करते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र भी है, उनके माध्यम से भी आप बातचीत कर सकते हैं तो जरूर आपको फायदा हो।
बिल्कुल साहब, फायदा हो सिर फायदे की बात महाराज मन मान आई है क्या पर जो कार्यक्रम इन बेला महाराज का ऊंट पालक भाई सुन रहे हैं और जगह नुआ नुआ जगह पशु पालक भाई है और भी जगह रोजगार करना चाहे है, मेरे मन में एक बात जरूर आई है साहब, आपकी बातें सुन पर मन ये लागे कि जे भी ऊंट खरीदना चाहे तो भी खरीदती बेला भी यानी किन बात रो ध्यान रखना चाहिए, बहुत सामान्य सी बात है, मन ये लगे लोग मन भाव आए हो।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पुराने लोग तो ऊंट को इतना ज्यादा जानते थे कि चलते हुए ऊंट से सब कुछ देख के बता देते थे, पर ये जो नई पीढ़ी आई है इनको कई चीजें पता नहीं होती है। तो सबसे पहले तो जो डील डोल होता है वो देखते हैं और उसके बाद सबसे बड़ी चीज है चाल, और चाल में ईडर टकराना ही नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि चाल ऊंट में बहुत महत्व रखती है। एक कुमरी रोग होता है जिसमें पीछे के पैर कांपने लग जाते हैं, तो वो उठते हुए और बैठते हुए कांपते हैं, वो देख ले कि उसके पैर कांपने नहीं चाहिए। तीसरा उसकी प्रजनन क्षमता का थोड़ा सा अंदाज लगा ले कि किसी चोट के कारण या और किसी कारण उसकी प्रजनन क्षमता में कोई फर्क तो नहीं पड़ा है। तो स्वस्थ ऊंट हो, चाल सही हो, उसकी कुमरी नहीं हो और प्रजनन क्षमता अगर उसकी सही है तो वो ऊंट उसकी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा दांत देखकर अनुमान लगा सकें तो ठीक है, नहीं तो किसी पशु चिकित्सक से उसकी उम्र की बात कर लें। लें तो 4 साल के आसपास का ऊंट लें ताकि वो उसको 10 साल तक सेवाएं दे सके तो ये बहुत अच्छा रहेगा।
क्यों ओम जी भाई, जो आपने भी ऊंट खरीदना है तो आज यहाँ पर बुजुर्ग ऊंट पालक है बीएसओ भी चर्चा करो। कुल मिलाकर ऊंट है वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, थोड़ी बहुत कटी बे महीने तो अपने डॉक्टर साहब से तुरंत संपर्क कर लेना चाहिए, संपर्क कर प्रो चौकी देखभाल कर अपने ऊंट खरीदना है। ऊंट जे खरीद ले सानी तो देखो आप वास्ते एक रोजगार हो नयो साधन आप सामने आसी सा।
भौम जी भाई जिया जिया डॉक्टर साहब जानकारी देता गया नी बिया बिया मारे दिमाग रे माए भी एक बात तो पक्की होगी और हो सके अपारे देश की नई पीढ़ी एजुका नव युवक पशुपालक है नी बियारे मन में भी आ बात बैठ गई होसी के बे ऊंट पालन ने पर्यटन सु जोड़ आपरी आमदनी बढ़ा सके। तो हूं तो घरे जार मारे छोरे ने राय देसू कि बिने भी इन बाबत प्रयास करना चाहिए।
बिल्कुल, देखो प्रकाश वनी जन अंधारो वनी अपना फट जाया करे और हमें देखो वक्त है ठिकानो बताउनो रो, ठिकानो बताओ
तो लिखो सा ठिकानो कार्यक्रम ऊंटारी बातें द्वारा केंद्र निदेशक ढोला मारू चैनल आकाशवाणी बीकानेर।
तो साहब देखो आज पीपल गट्टे हेठे आपने जानकारी दिमसर पधार्या डॉक्टर शरद चंद्र मेहता, आज आप बातचीत करी ऊंट नस्ल संरक्षण माए ऊंट निरे दूध और पर्यावरणीय पर्यटन रो महत्व विषय पर। डॉक्टर साहब आप पीपल गट्टे हेठे बैठ माने बहुत ही बढ़िया अच्छी जानकारी दी, इन सारो मैं आपने करा धन्यवाद और आपने मैं करा
राम राम, राम सर।
राम राम सर।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
आज मैं थारो बता।
ऊंटा दी बातियां आकाशवाणी बीकानेर जयपुर माउंट आबू उदयपुर बांसवाड़ा बाड़मेर जैसलमेर और जोधपुर से एक साथ प्रसारित। दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊंटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां।